मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 29 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित तौर पर मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचना यह है कि दो दिन शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन शनिवार को आप सबको प्रेस क्लिपिंग्स बकायदे उसी तरह से पढ़ने को मिल जाएंगी जिस तरह से अभी मिलती रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को कल एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग के लिए भी साथ ही साथ अभ्यास कर सके। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे भारत चीन तनाव के जो मुख्य कारण हैं कुछ उन पर थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो दूसरी खबरों को देख लेते हैं। हालांकि खबरें कुछ ऐसी हैं नहीं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से लगातार कोरोना पर तो अभी एक स्पेशल बुलेटिन के रूप में रात का समाचार आप सुन ही रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारे स्क्रीन का और अखबारों का के जो पृष्ठ हैं वो कोरोना से ही जुड़े हुए समाचारों से भरे हुए हैं, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। एक खबर जो आप लोगों ने कल सुनी होगी वो ये है कि हमारे यहाँ के जो 70% संक्रमित मरीज हैं वो 13 शहरों तक सीमित हैं। अब आप देखिए कि हमारे इतना बड़ा हमारा देश है तो उसका सिर्फ 70% जो टोटल हिस्सा है वो 13 शहरों में है, यानी कि अगर हम इन 13 शहरों की बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेते हैं तो यानी मतलब यह हुआ कि 70% मरीजों पर हमारा नियंत्रण हो गया है, हम उनकी देखभाल करके उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि दिन लगातार स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, एक अच्छा साइन है। अपने न्यूज में यह भी बात सुनी कि किस तरह से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी देश का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट्स होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी आप देखिए कि कैसे सीधे किन से बात कर रहे हैं, नगर निगम के आयुक्तों से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किन से बात करेंगे, सीधे सीधे वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं, है ना। स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, जो भी कहना होगा वो चीफ सेक्रेटरीज को कह देंगे कि भाई देखिए इन इन बातों का ध्यान रखिए, इस तरह से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, हमको आप ये रिपोर्ट भेजिए। और फिर जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो या तो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे प्रखंड के जो कमिश्नर होते हैं संभाग के उनसे बात कर लेंगे, या अगर वो चाहें तो सभी कलेक्टर्स से बात कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये सूचना ये खबर बहुत अच्छी लगी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने सीधे नगर निगम के आयुक्तों से बात की है, कलेक्टर से बात की है। अब ये देखिए कि इसके दो भाग हैं, इसको आप कैसे देखेंगे, है ना। चूंकि सिविल सर्विस में आप एंटर होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो आपका जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें सिविल सर्विस से संबंधित टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इधर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन इसको लेकर के आप एक विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। विवाद की स्थिति यह है कि भाई इसका मतलब यह हो कि केंद्र जो है सीधे ही अब लोकल अथॉरिटी पर हस्तक्षेप कर रहा है ना। अदरवाइज राज्य है, राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपने नगर निगम के आयुक्तों से बात करे, कलेक्टर से बात करे। कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों कलेक्टर से बात कर रहा है, आप ये एक प्ली ले सकते हैं क्योंकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, हमारा एक संघीय रूप है, तो संघीय रूप में आप राज्य को कह दीजिए, चूंकि अभी एक्ट लागू है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 का जो एक्ट है और उसके तहत सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, नो डाउट वो चीज है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास राज्य के विधानमंडल है वो काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो वह भी एक काम करने का पैटर्न है। तो दोस्तों केवल आपके ध्यान में मैं ये बात ला रहा हूं कि ये चीज बड़ी छोटी सी है, लेकिन हो सकता है कि इस पर कुछ प्रश्न अगर इस तरह से पूछे जाएं तो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। फ्रेंड्स आइए अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं, और वह भारत चीन तनाव के कारण। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे जो ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं उनसे मैंने अनुरोध किया था कि वे जो उनको लेक्चर प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत चीन के ऊपर उसे वे सुने, और उन्होंने सुनने के बाद जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है उससे मुझे बेहद खुशी हुई। दोस्तों खुशी सच बात यह है कि जब आप किसी काम पर मेहनत करते हैं और उसके परिणाम आपके सामने आते हैं तो देखिए खुशी होगी ही, है ना। आपने 10 साल पहले आम का एक पेड़ लगाया था, फिर उस आम के पेड़ में बौर आए और इसके बाद उसमें फल लगे और अब उसमें अभी आम लटक रहे हैं, लटकते हुए आमों को देख करके आपको खुशी होगी ही। तो मुझे खुशी इस बात को लेकर के हुई कि बहुत से स्टूडेंट ने ये लिखा कि सर उसको सुनने के बाद जो ताइवान वाली प्रॉब्लम है अभी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और उसके जो असेंबली को हम WHO कहते हैं उसमें जो पर्यवेक्षक के दर्जा देने की बात कही जा रही है और चीन जिसका विरोध कर रहा है हमारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों सिविल सर्विस की तैयारी करने का यही सही तरीका है कि आप पढ़ते कुछ हैं और समझ में उससे जुड़ी हुई सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? तो दोस्तों मुख्य विषय के तहत जो मैं आपसे थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, हालांकि इतना वक्त नहीं होता है कि मैं इस पर विस्तार से बात करूं, वो केवल उन मुद्दों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो भारत और चीन के बीच इनफैक्ट आज भी तनाव के कारण बने हुए हैं। क्या कारण है, कौन कौन से कारण है, आइए उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट के हिसाब से देख लेते हैं क्योंकि उसकी व्याख्या करने का अवसर उतना अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक दो जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन्हें मैं बताना चाहूंगा यदि वक्त रहा तो। देखिए जो सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है अभी की स्थिति को हम लें और अभी आप अखबारों में पढ़ रहे हैं वह है सीमा विवाद, सीमा का विवाद। इस पर मैं बाद में थोड़ी सी बात करूंगा, बाद में मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि ताकि अधिक से अधिक वक्त का इस्तेमाल कर सकूं। अखबारों में आप बीच बीच में अरुणाचल प्रदेश पर भी सुनते होंगे, है ना, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन अपना दावा करता है, भारत का हिस्सा है, भारत का है ही, तो चीन उस पर दावा करता है तो वह भी एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाता है, बनेगा ही। इसके बाद दोस्तों फिर है तिब्बत की समस्या, तिब्बत की समस्या जो है वो दलाई लामा से जुड़ी हुई समस्या है। देखिए इस पर वक्त हुआ तो मैं इस पर भी बात करूं, अभी मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं पॉइंट वाइज कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और सच पूछे तो यही मेरे डेली ऑडियो लेक्चर का मकसद भी है कि मैं आपको तैयारी करने लायक बना सकूं, अदरवाइज दोस्तों 12-15 मिनट के रोज के लेक्चर से मैं आपको तैयारी तो नहीं करवा सकता। देखिए तो बहुत ही सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सीमा विवाद, सीमा विवाद में कई तरह के हैं, एक ही सीमा नहीं है क्योंकि चीन के साथ हमारी काफी लंबी सीमा है तो अलग अलग क्षेत्रों की सीमाएं हैं और वहां फिर अलग अलग तरह के विवाद हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार की बात को लेकर के विवाद है, ये चीन की तरफ से हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। फिर दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए हैं या यूं कह लीजिए कि तिब्बत की जो समस्या है, हालांकि तिब्बत पर भारत ने स्पष्ट रूप से चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया है लेकिन फिर भी। इसके बाद जो है दोस्तों वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र, अक्सर आप देखते होंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैसे चीन अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाह रहा है, और इसी में एक शब्द है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, वो जगह जगह पर इस पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र में एक तरह के मोतियों की माला जैसी तैयार करना चाह रहा है ना, इसके तहत देश आते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीप, मॉरिशस, सेसल्स, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब के सब एक इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र में है। तो यहां ये अपने अड्डे तैयार करना चाहता है, समुद्री अड्डे तैयार करना चाहता है चीन, ताकि उस पर वो अपना प्रभुत्व जमा सके, तो ये भारत के लिए एक चुनौती है, तो ये एक कारण बन जाता है। इसके बाद चीन पाक आर्थिक गलियारा, इसके बारे में आप अक्सर अखबारों में सुनेंगे जब भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति होगी तब। फिर चीन और पाकिस्तान के जो आपस के संबंध हैं अभी उसको लेकर के भी भारत और चीन के संबंधों में कहीं ना कहीं आप यूं कह लीजिए कि तनाव पैदा हो जाता है। फिर अब एक नई और शुरुआत हो गई है जो नेपाल को लेकर के आप पढ़ रहे हैं कि अब चीन नेपाल को भी शह देने की शुरुआत कर चुका है, और फिर विश्व स्तर पर तो अभी जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा भारत और चीन के बीच चल रही है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल तो प्ले करती है, और एक नई समस्या अभी जो आ गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कि चीन के खिलाफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जांच की जानी चाहिए कि उसने अभी खासकर जो कोरोना वायरस का मामला हुआ उसमें उसने चीन को आउट ऑफ वे जाकर के मदद की है, सहायता पहुंचाई है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। भारत ने भी इसका समर्थन कर दिया कि हाँ इसकी जांच की जानी चाहिए। फिर अब यह हुआ कि WHO में ताइवान को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया जाए, अब भारत अब WHO का अध्यक्ष बन गया है, तो अब फिर से चीन इसको लेकर के डेफिनेटली नाराज होगा, तनाव महसूस करेगा। तो इस तरह से नए नई स्थितियां जुड़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में तनाव के अंतर्गत होने चाहिए। अब जो सीमा विवाद है इसमें एक जो महत्वपूर्ण विवाद है फ्रेंड्स वो है मैकमोहन रेखा। देखिए, भारत और चीन की सीमाओं को बेहतर होगा कि आप बकायदे मैप पर जाकर देखें, बकायदे। तो भारत और चीन की सीमा आपको तीन भागों में विभाजित होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ भूटान से पूर्व की सीमा आप देखिए तो उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई सीमाएं मिलेंगी। इसके बाद फिर चीन का जो तिब्बत है वह जम्मू कश्मीर से लगा हुआ मिलेगा, और उसके बाद फिर पश्चिम सीमा। तो इस तरह से अलग अलग सीमाएं आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, वो है मैकमोहन रेखा। दोस्तों, ये जो मैकमोहन रेखा है इसे चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, भारत इसे शुरू से स्वीकार करता आ रहा है। इसकी पृष्ठभूमि यह है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लीजिए, थोड़ा सा वक्त है। 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, 1914 यानी कि ब्रिटिश भारत, ब्रिटेन का राज था। तो उस सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, चीन था और तिब्बत, इन तीनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और उसमें जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, जो प्रतिनिधिमंडल था, उसके एक सदस्य थे आर्थर हेनरी मैकमोहन, ठीक है। तो जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो समझौता हुआ उसके आधार पर एक रेखा खींची गई। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह रेखा भी एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है उसका सबसे अव्यवहारिक पक्ष यही है कि वो प्राकृतिक रेखा नहीं है। प्राकृतिक रेखा का मतलब अभी कोई नदी आ गई, कोई समुद्र आ गया, पहाड़ आ गया, तो उसी को आपने मान लिया तो ये प्राकृतिक रेखा हो गई। तो जो मैकमोहन रेखा है वो प्राकृतिक रेखा पर आधारित है, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। और यही सच पूछिए तो विवाद का सबसे बड़ा कारण है चीन उसे स्वीकार नहीं करता है, भारत उसे स्वीकार करता है। तो दोस्तों, बहुत विस्तार के साथ बातें करने का अवसर चूंकि नहीं है, लेकिन मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि अभी जैसी स्थितियां बन रही हैं आपको चाहिए कि भारत और चीन के जो संबंध हैं उन पर आपकी बेहतर समझ होनी चाहिए। और वैसे भी देखिए, यह विषय बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि लगातार नया बना रहने वाला विषय है। चीन भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रेड पार्टनर भी है, चाहे आयात को लें चाहे निर्यात को लें। हमारा इतना पुराना पड़ोसी है, लंबे समय से हमारे संबंध चले आ रहे हैं, लंबे समय का मतलब ऐतिहासिक काल से। तो इस पर अगर आपकी अच्छी समझ एक बार विकसित हो जाएगी तो लंबे समय तक यह आपकी मदद करती रहेगी। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सैफ अहमद, वीरेंद्र कुशवाहा दतिया मध्य प्रदेश से, और अजय अग्निहोत्री बदायूं उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। इस बीच में अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, कुशल से रहें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।